नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 25 मार्च 2022 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम की सुर्खियां। यूक्रेन में एक महीने से जारी युद्ध से गहराता मानवीय संकट, 1 करोड़ से अधिक लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर, देश में बच्चों की आधी आबादी विस्थापित। यूएन महासचिव ने कहा, इस बेतुके युद्ध का अंत करने और शांति को अवसर देने का समय। अफगानिस्तान में हाईस्कूल छात्राओं की कक्षाओं में वापसी पर पाबंदी को फिर बढ़ाया गया। टीबी की बीमारी के कारण हर दिन होती हैं 4000 से अधिक मौतें, रोकथाम उपायों में निवेश की पुकार। और जलवायु सहन क्षमता निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं महिलाएं, सुनिएगा एक खास इंटरव्यू। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूसी सैन्य बलों के आक्रमण के बाद पिछले एक महीने से युद्ध जारी है। 1 करोड़ से अधिक लोग जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। 37 लाख से अधिक लोगों ने अन्य देशों में शरण ली है। 65 लाख देश की सीमाओं के भीतर ही विस्थापन का शिकार हुए हैं। 43 लाख बच्चे भी विस्थापित हुए हैं, जो कि देश में कुल 75 लाख बच्चों की आधी से अधिक आबादी है। यूएन एजेंसियों की प्राथमिकता जान बचाकर भाग रहे लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना और उनके संरक्षण, भोजन, आश्रय, आपात नकदी और अन्य प्रकार की मदद का प्रबंध करना है। मगर अनेक इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बुधवार को कहा कि ये समय एक कूटनैतिक समाधान की तलाश करने का है।
Continuing the war in Ukraine is morally unacceptable, politically indefensible, and militarily nonsensical.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि यूक्रेन में युद्ध का जारी रहना नैतिक दृष्टि से अस्वीकार्य है, राजनीतिक रूप से उसका बचाव नहीं किया जा सकता और सैन्य नजरिए से ये नासमझी है। उन्होंने आगाह किया कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता है। देर सवेर रणभूमि से शांति की मेज पर आना होगा और इसे टाला नहीं जा सकता है।
It is time to stop the fighting now and give peace a chance. It is time to end this absurd war.
UN प्रमुख कह रहे थे कि ये समय इस बेतुके युद्ध का अंत करने और शांति को एक अवसर देने का है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11वें आपात विशेष सत्र के दौरान यूक्रेन के विरुद्ध रूसी आक्रामकता से उपजे मानवीय हालात के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सदस्य देशों ने भारी मतों से पारित किया। इस प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन में आक्रामकता तुरंत रोकने और नागरिक आबादी व प्रतिष्ठानों पर हमले तत्काल बंद किए जाने की मांग की गई है। साथ ही आम लोगों को युद्धग्रस्त इलाकों से सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता मुहैया कराने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया गया है। मानवाधिकार मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने अफगानिस्तान में हाईस्कूल की छात्राओं की स्कूल वापसी के मुद्दे पर तालिबान द्वारा लिए गए यू टर्न पर गहरी हताशा और निराशा जताई है। माध्यमिक स्तर की छात्राओं के लिए इस सप्ताह देश में स्कूल खोले जाने की तैयारी थी, मगर बुधवार सुबह तालिबान प्रशासन द्वारा इस निर्णय को पलट दिया गया और ये पाबंदी बढ़ा दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
यूएन उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने बुधवार को जारी अपने वक्तव्य में कहा कि 6ठी से ऊपर की कक्षा में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए स्कूल फिर से खोले जाने के वादों को पूरा करने में विफल रहने से अफगानिस्तान को बहुत नुकसान होगा। मिशेल बाशलेट ने ध्यान दिलाया कि लड़कियों की शिक्षा के लिए बार बार संकल्प व्यक्त किए गए थे और 2 सप्ताह पहले उनकी काबुल यात्रा के दौरान भी ऐसा कहा गया था। बताया गया है कि देश भर में लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोले जाने की तैयारी थी, मगर बुधवार सुबह तालिबान प्रशासन द्वारा इस निर्णय को पलट दिया गया और पाबंदी बढ़ा दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बुधवार को अपने एक वक्तव्य में हाई स्कूल की छात्राओं की स्कूल वापसी को स्थगित किए जाने के तालिबान के फैसले पर गहरा खेद प्रकट किया है। उन्होंने दोहराया कि शिक्षा अवसरों को नकार दिए जाने से महिलाओं व लड़कियों का समान शिक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन होता है, साथ ही इससे देश के भविष्य के लिए भी जोखिम पैदा होता है।
संयुक्त राष्ट्र ने चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाव के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेश किया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों के भीतर समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों का लाभ हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान एजेंसी को इन प्रयासों की अगुवाई करने और इस साल नवंबर में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन के दौरान योजना प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चरम मौसम की घटनाओं जैसे कि ताप लहरें, सूखा, वनों में आग, भारी बारिश, बाढ़ समेत अन्य घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया कि समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों के संबंध में मौजूदा विषमताओं को दूर किया जाना होगा।
Today, 1/3 of the world's people, mainly in least developed countries and small island developing states, are still not covered by early warning systems.
विश्व में 1/3 आबादी के पास अब भी समय पूर्व चेतावनी प्रणालियां उपलब्ध नहीं हैं और इनमें से अधिकांश लोग सबसे कम विकसित और लघुद्वीपीय विकासशील देशों में रहते हैं। एकीकृत समय पूर्व चेतावनी प्रणाली के जरिए बाढ़ और सूखे की घटनाओं, ताप लहरों और तूफानों से समय रहते बचाव उपायों को अमल में लाना संभव होता है और तैयारियों से जान माल का नुकसान भी कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है कि तपेदिक या टीबी के विरुद्ध लड़ाई में दर्ज प्रगति की दिशा का उलटना चिंताजनक है। यूएन एजेंसी के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से अब तक 6.5 करोड़ से अधिक जिंदगियों की टीबी से रक्षा करने में मदद मिली है, मगर कोविड-19 महामारी से उपजे व्यवधान के कारण जोखिम पैदा हो गया है। और विवरण के साथ अंशु शर्मा।
यूएन एजेंसी ने गुरुवार 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर आगाह किया है कि टीबी से होने वाली मौतों में वर्ष 2020 में वृद्धि हुई और पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। टीबी दुनिया में सबसे जानलेवा बीमारियों में से है। हर दिन 4,000 से अधिक लोगों की तपेदिक के कारण मौत होती है और 30,000 से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक टीबी की रोकथाम व पूर्ण रूप से इलाज संभव है और इस चुनौती पर विराम लगाने के लिए सभी सेक्टरों द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होगी। टीबी के निदान, उपचार और रोकथाम सेवाओं के लिए 2022 तक वार्षिक $13 अरब के खर्च का लक्ष्य रखा गया है, मगर 2020 के दौरान इस लक्षित व्यय की आधे से भी कम रकम का इस्तेमाल हुआ है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने विश्व तपेदिक दिवस पर सदस्य देशों से टीबी सेवाओं की सुलभता फिर से बहाल करने और वैश्विक महामारी के कारण आए व्यवधान से निपटने का आह्वान किया है, विशेष रूप से बच्चों व किशोरों के लिए।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सहन क्षमता निर्माण को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। भारत में महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट नामक एक गैर सरकारी संगठन शहरी इलाकों में रहने वाले निम्न आय वाले परिवारों में महिलाओं को संगठित करने और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। जलवायु परिवर्तन मामलों के लिए यूएन संस्था ने वर्ष 2019 में इस संगठन को वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए सम्मानित किया था। यूएन न्यूज हिंदी की प्रतिष्ठा जैन ने इस ट्रस्ट की निदेशक बीजल ब्रह्मभट्ट से बात की और जानना चाहा कि महिलाओं को जलवायु कार्रवाई के केंद्र में रखना क्यों अहम है।
हम तो एक संस्था है जो हमेशा से असंगठित क्षेत्र की श्रमजीवी गरीब बहनों के साथ काम करते रहे हैं, तो हम हमेशा मानते हैं कि बहनों के साथ काम करना ज्यादा फलदायी है। 3-4 वजह की वजह से। एक तो असंगठित क्षेत्र जो इंडिया और जो ग्लोबल साउथ में बहुत ज्यादा लोग जिससे रोजी रोजगार प्राप्त करते हैं, उसमें बहनों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। वो बहुत काम करती हैं लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है कामदार के तौर पे। दूसरी, उनके अपने प्रश्न भाइयों से थोड़े हटके भी होते हैं जो सिर्फ बहन होने की वजह से होते हैं समाज में। और तीसरा, हम ये भी मानते हैं कि जब बहनों के साथ काम करेंगे तो जो उनकी कमाई या आमदनी जब बढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को ज्यादा जाती है। जो जरूरी नहीं है कि भाई कमाएंगे तो सब कुछ परिवार के लिए डालेंगे, वो जरूरी नहीं है। वो जुआ भी खेल सकते हैं, दारू भी पी सकते हैं। तो ये सोच थी एक। और जलवायु परिवर्तन के लिए खास तौर से क्योंकि ज्यादा असर बहनों पे होगी, क्योंकि उनको घर की भी जिम्मेदारी है और बाहर भी उनको संभालना है, वो कामदार भी हैं, तो उनके ऊपर स्पेसिफिक ज्यादा असर होगी। और मुझे लगता था कि ये पूरी जो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा चला था उसमें बहनों का इतना ज्यादा कोई आवाज नहीं थी। तो वैसे भी हम बहनों के लिए काम करते थे, तो जलवायु परिवर्तन भी हमने बहनों के लिए फोकस किया।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।